الف، قسط نمبر 6۔ میری پیاری حسن جہاں جی، آپ کا خط ملا اور دل کٹ گیا۔ وہ بے وفا نکلا نا، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ سے طٰہٰ عبداللہ پر بھروسہ نہ کریں، سلطان کی محبت کے سوا کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ مگر آپ نے ہمیشہ طٰہٰ کے نام کی تسبیح کی، سلطان کو آزمایا ہی نہیں۔ میں آپ کا خط پڑھ کر روتا رہا ہوں، پرندہ ہوتا تو اڑ کر آ جاتا آپ کے پاس، لیکن انسان ہوں اور انسانوں کو جانے میں لمحہ لگتا ہے، آنے میں وقت لگتا ہے۔ پھر بھی سلطان آئے گا آپ کے پاس، بس چند مہینوں یا ہفتوں کا انتظار کر لیں۔ اپنے آپ کی اور قلب مومن کی ٹکٹوں کے لیے پیسے جمع کر لوں تو آتا ہوں آپ کے پاس، پر میرے آنے تک طٰہٰ کے جانے کا غم نہ کریں آپ، نہ اس کے لیے آنسو بہائیں، اپنی دنیا میں واپس آ جائیں۔ فلم انڈسٹری آج بھی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے، لوگ آج بھی آپ کو یاد کرتے ہیں، سینما کی اسکرین پر آج بھی کوئی اداکارہ حسن جہاں کی طرح دلوں پر راج نہیں کرتی۔ طٰہٰ عبداللہ نے قدر نہیں کی آپ کی، آپ نے اس کے لیے اپنی سلطنت چھوڑ دی تھی، اس نے پرواہ نہیں کی تو آپ کب تک پرواہ کرتی رہیں گی اس کی؟ جانتا ہوں دل سے کسی کو بھلانا آسان ہوتا ہے، مٹانا نہیں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں آپ نہ اس کو بھولیں نہ اس کو مٹائیں، بس اپنی دنیا میں لوٹ آئیں۔ حسن جہاں جی، یہ جو ہم جیسے ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ مٹی کے ہی رہتے ہیں، ہمیشہ جسم ہی عروج دیتا ہے ہمیں، اور یہی زوال۔ اور روحانیت کے لیے بنے ہی نہیں ہوتے، اس راستے پر چلنے والے اور ہوتے ہیں، ان کا خمیر بھی اور جگہ سے اٹھا ہوتا ہے۔ میں اور آپ زیادہ سے زیادہ نیک ہو سکتے ہیں، اپنی اولادوں کا نام قلب مومن اور مومنہ رکھ سکتے ہیں، مگر بس اتنا ہی، اس سے آگے جائیں تو پر جلنے لگتے ہیں ہمارے اور تپش سہ نہیں پاتے ہم۔ آپ کو روکا تھا میں نے بہت، اسی لیے روکا تھا کیونکہ وہاں آگے آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا تھا، اور جس دنیا میں آپ تھیں وہاں آپ کا سکہ چلتا تھا۔ آپ نے سلطان کی بات نہیں سنی، سکہ بدل گیا ہے اب آپ کے جانے کے بعد یہاں کا، پر کوئی بات نہیں، آپ چاہیں تو پھر آپ کا راج ہوگا یہاں، اور میں سلطان آپ کے ساتھ ہوں، اچھے اور برے سارے دنوں میں آپ کے ساتھ سایہ بن کر چلوں گا، کیونکہ آپ سے پیار کرتا ہوں، ویسا پاگلوں والا پیار جو آپ طٰہٰ سے کرتی ہیں۔ نہ آپ بدلیں گی نہ میں بدلوں گا، خط لکھ رہا ہوں تو دل کھول کر رکھ دیا ہے آپ کے سامنے، ورنہ اتنے سالوں میں ہر بار آپ سے بات کرتے ہوئے کبھی آپ نظریں چراتی تھیں، کبھی میں جانتا ہوں سلطان کو آپ بھی بھول نہیں سکتی، طٰہٰ کے بعد اگر کوئی یاد آتا ہوگا تو سلطان ہی یاد آتا ہوگا آپ کو۔ میری خوش فہمی دیکھیں کیا لکھ رہا ہوں آپ کو، نہ اپنی شکل دیکھ رہا ہوں نہ اپنی اوقات، لیکن پیار کا کیا کریں اس نے جہاں جی، یہ میرے جیسوں کو بھی اوقات سے باہر کر دیتا ہے، سلطان ہی سمجھنے لگ گیا ہوں اپنے آپ کو۔ آپ نے بڑا ظلم کیا ہے مجھ پر، بیچ راستے میں مجھے چھوڑ کر اتنے سالوں میں سلطان آسمان سے زمین پر آ گیا مگر نہیں بدلا تو اس کے دل میں آپ کا مقام۔ آپ آج بھی سلطان کے دل کے تخت پر وہیں بیٹھی ہیں جہاں اس نے پہلی بار آپ کو بٹھایا تھا، اور یہ مقام سلطان کبھی کسی کو نہیں دے گا، طٰہٰ اور سلطان میں بس یہی فرق رہے گا ہمیشہ، وہ آپ کو چھوڑ سکتا ہے، سلطان نہیں، آپ کا سلطان۔
تم جا رہے ہو؟ قلب مومن صبح سویرے اپنا سامان پیک کر رہا تھا، جب عبداللہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دے کر اندر آئے تھے اور اسے سامان پیک کرتے دیکھ کر ان کا دل کسی دیے کی طرح بجھا تھا، جانے کے لیے ہی آیا تھا دادا۔ قلب مومن ان کی طرف متوجہ ہوئے بغیر کھلے بیگ میں اپنی چیزیں پھینکتا رہا۔ ناراض ہو کر جا رہے ہو؟ انہوں نے چند لمحوں کے بعد اس سے کہا۔ قلب مومن ٹھٹکا اور اس نے سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے ان سے کہا، ناراض کس بات پر ہوں گا؟ وہ سنجیدہ تھا۔ عبدالعلیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا۔ کل رات تمہارے اور میرے درمیان، انہوں نے کچھ کہنا چاہا، قلب مومن نے بات کاٹ دی۔ کل رات آپ کے اور میرے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوا جس پر میں آپ سے خفا ہوتا۔ چیلنج تھا جو آپ نے دیا اور میں نے چیلنج قبول کر لیا۔ اس سب میں خفگی والی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ کہہ کر دوبارہ جھک کر اپنے بیگ کی زپ بند کرنے لگا تھا۔ عبداللہ کی سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی بات کے جواب میں کیا کہتے۔ کچھ دیر کھڑے وہ جیسے کوئی الفاظ ڈھونڈتے رہے، پھر انہوں نے کہا، قلب مومن، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، تمہارا دل کبھی بھی دکھانا نہیں چاہتا میں، اور مجھے لگا شاید پچھلی رات میں تمہارا دل دکھا بیٹھا ہوں۔ انہوں نے بالآخر وہ الفاظ ڈھونڈ لیے تھے جو وہ اس سے کہنا چاہتے تھے۔ قلب مومن نے اپنی پیکنگ ختم کر لی تھی۔ اپنے بیگز کو ایک طرف اوپر نیچے رکھتے ہوئے اس نے بے حد اطمینان سے عبداللہ کی بات سنی۔ اس کے انداز میں ایک عجیب سرد مہری تھی، انڈیفرنس کا ایک عجیب سا عالم تھا۔ آپ کو پتا ہے دادا، آپ مجھے کیوں کمتر سمجھتے ہیں؟ اس کے جملے نے عبداللہ کو بچھو بن کر کاٹا تھا۔ آپ مجھے اس لیے کمتر سمجھتے ہیں کیونکہ میں حسن جہاں کی اولاد ہوں، جس کے پاس حسن اور جسم کے استعمال کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں۔ آپ اسی لیے ان سے بابا کی شادی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک ڈانسر تھی۔ قلب مومن کی آنکھوں اور چہرے پر جیسے میں سب جانتا ہوں لکھا تھا۔ عبداللہ نے تڑپ کر اسے روکا تھا۔ حسن جہاں سے شادی سے روکنے کی وجہ نہ اس کا اداکار ہونا تھا نہ رقاصہ ہونا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ میں تمہیں اس لیے کمتر سمجھتا ہوں، اور کس نے کہہ دیا کہ حسن جہاں کے پاس حسن اور جسم کے علاوہ کچھ اور تھا ہی نہیں؟ عبداللہ کے اندر اب عجیب سی برہمی تھی۔ اس کے پاس نیک روح تھی جو تم نے کھو دی۔ قلب مومن ان کے جملے پر ہنس پڑا۔ اس نے جہاں کے پاس تھی میں نے کھو دی، اس نے ان کا جملہ استہزائی انداز میں دہرایا تھا۔ آپ کے نزدیک نیک روح صرف ان کے پاس ہوتی ہے جو یہ کام چھوڑ دیتے ہیں، یا پھر ان کے پاس جو آپ کی طرح خطاطی کرتے رہتے ہیں؟ دادا، اسپرچولیٹی کسی کی میراث نہیں ہے، وہ ایک بار پھر ان سے الجھ پڑا تھا۔ پتہ نہیں کہاں چوٹ پڑی تھی مومن کو۔ بے شک نہیں ہے، مگر اللہ کی عطا ہے، اور اللہ اسے صرف اس کی قدر جاننے والوں کو عطا کرتا ہے۔ قلب مومن انہیں دیکھتا رہا۔ ایک لاوا تھا جو ان کے اس جملے پر اس کے اندر سے باہر پھوٹ پڑنا چاہتا تھا۔ اس نے عبداللہ سے نظریں چرا لی۔ وہ اس بوڑھے شخص کا اتنا احترام کرتا تھا کہ وہ لاوا ان پر الٹا دینا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس کی وجہ نہیں تھے، اور جسے وہ نیک روح کہہ رہے تھے، قلب مومن اسے کبھی جسم کے علاوہ کچھ ماننے پر تیار ہی نہیں تھا، چاہنے کے باوجود بھی۔ میں چلتا ہوں، اور رکوں گا تو اور بحث ہوگی ہماری۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے دادا کو گلے لگا لیا۔ جب تم یوں گلے لگاتے ہو تو تاہا یاد آتا ہے مجھے، وہ عبداللہ کی آواز پر جیسے ٹھٹک گیا تھا۔ پھر الگ ہوتے ہوئے ہنسا۔ جانتا ہوں میں، بابا ہی کے لیے اداس ہوتے ہیں آپ، میرے لیے کہاں ہوتے ہوں گے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا تھا اور جیسے وہ عبداللہ کا جواب سنے بغیر بھاگ گیا تھا۔ عبداللہ کو رنج ہونا چاہیے تھا، وہ رنجیدہ ہونے کے بجائے مسکرائے تھے۔ وہ ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، برف کی طرح سرد نظر آتا تھا مگر آگ کی طرح گرم تھا، سمندر کی طرح گہرا تھا مگر ریگستان کے سراب کی طرح اشتباہِ نظر کا شکار کرتا تھا۔ قلب مومن تھا مگر مومن بننے کے راستے سے پرے۔ وہ جو لوکیشنز کہیں تھیں آپ نے سبھی مارک کر لی ہیں اور سب پر ہی کام ہو گیا ہے۔ داؤد اور ٹینا اسے استنبول میں گزارے پچھلے کچھ دنوں میں کیے جانے والے کام کے بارے میں اپڈیٹ دے رہے تھے، اور قلب مومن اس ہوٹل کے لاؤنج میں پڑے ایک صوفے پر بیٹھا ان کی باتیں سنتا ہوا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ استنبول کی نائٹ لائف کو کیپچر کرنے کے لیے نائٹ کلبز کی بھی ریکی کر لی ہے ہم نے۔ اب ٹینا اپنے لیپ ٹاپ پر اسے ان جگہوں کی تصاویر دکھانے لگی تھی جو وہ اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے منتخب کر چکے تھے۔ قلب مومن آج ہی عبداللہ کے پاس سے واپس استنبول آیا تھا، اور اس وقت داؤد اور ٹینا کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات تھی۔ ڈیٹس فائنل کر کے کل سے ای میلز کا کام ختم کر لیں گے، شوٹنگ کوآرڈینیشن کے لیے پوسٹ پروڈکشن کا کام بھی۔ یہاں ایک اسٹوڈیو کے ساتھ قلب مومن نے داؤد کو پہلی بار ٹوکا، میں اس فلم کی شوٹنگ کچھ عرصے کے لیے پوسٹ پون کر رہا ہوں، اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا تھا۔ ٹینا اور داؤد بیک وقت چونکے تھے اور انہوں نے کچھ بے یقینی کے عالم میں اسے دیکھا۔ قلب مومن مذاق یقیناً نہیں کر رہا تھا۔ میں اس فلم سے پہلے ایک اور فلم بنانا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایک بے حد یونیک آئیڈیا ہے۔ قلب مومن کے اگلے جملے پر ٹینا بے حد ایکسائٹڈ ہوئی تھی۔ ایک سال میں دو فلمز؟ فینٹاسٹک! میں تو پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ سال میں ایک کے بجائے دو فلمز کرنی چاہیے آپ کو۔ جب انویسٹرز انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، برانڈنگ اور پروڈکٹ پلیسمنٹ کے لیے تیار ہیں، تو پھر بیوقوفی ہی ہے بس ایک ہی فلم کرتے جانا۔ کیا سبجیکٹ ہے دوسری فلم کا؟ ٹینا جوش و خروش میں بات کرتے کرتے اب سبجیکٹ کو کریدنے لگی۔ داؤد ساری گفتگو کے دوران خاموش ہی رہا تھا۔ قلب مومن نے میز پر پڑے گلاس سے پانی کا ایک گھونٹ بھرا اور کہا، اسپرچویلٹی۔ ٹینا کو چپ لگ گئی۔ داؤد کو پہلے ہی لگی ہوئی تھی مگر وہ ایک دوسرے کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ کیا کہتے ہیں اسے اردو میں؟ قلب مومن نے جیسے کچھ الجھ کر یاد کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھول گیا تھا۔ داؤد نے کچھ کہنے کے بجائے لیپ ٹاپ پر گوگل پر اس لفظ کا اردو ترجمہ ڈھونڈا اور پھر کہا، روحانیت۔ بس اسی کے بارے میں فلم بنانی ہے مجھے، قلب مومن نے بے ساختہ کہا۔ یہ جس کے نام کا مطلب ابھی گوگل سے ڈھونڈا ہے؟ ٹینا نے بے یقینی سے قلب مومن سے کہا۔ اس نے جواباً اسبات میں سر ہلایا۔ مگر اس میں دکھائیں گے کیا؟ ٹینا نے بے ساختہ کہا، اور اس بار تینوں کو بیک وقت چپ لگی تھی۔ خاموشی کے ایک لمبے وقفے کے بعد قلب مومن نے جیسے اپنی خجالت مٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، سوچو۔ وہ کہتے ہوئے اٹھ کر گیا۔ بہت سی میرا آئیڈیا نہیں تھا، داؤد نے جیسے کراہتے ہوئے اسے پکارا تھا، مگر وہ تب تک کافی دور جا چکا تھا۔ مومن کا اسٹوڈیو ایک بار پھر شوبز کے لوگوں اور جرنلسٹ سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ مختلف چینلز، کیمرہ مین اپنے کیمرے ایڈجسٹ کرنے میں مصروف تھے، اور ان سب کے درمیان میں مومن کمرے میں داخل ہوا تھا، اور سب سے پہلے اس کی طرف لپک کر آنے والی شیلی تھی جو آتے ہی اس کے گلے لگی تھی۔ مومن، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس دوسری فلم کا سن کر۔ اس فلم میں بھی لیڈ کروں گی نا؟ اس نے الگ ہوتے ہوئے بے حد اٹھلاتے ہوئے مومن سے کہا تھا۔ بالکل، وقت کی کمی کی وجہ سے کوئی اور آپشن ڈھونڈنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ قلب مومن نے بھی اسی انداز میں جواب دیا تھا، مگر شیلی برا منانے کے بجائے ہنسی تھی، اور وہ ایک بار پھر مومن کے گلے لگی، اور تبھی مومن کی نظریں عباس پر پڑی تھی جو اس کے قریب آ چکا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو مومن بھائی، میرے لیے یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ایک ہی سال میں آپ کی دونوں فلموں میں ہیرو بننے کا موقع مل رہا ہے مجھے۔ اس نے شیلی کے ہٹتے ہی بے حد جذباتی انداز میں کہتے ہوئے مومن کے گلے لگنا ضروری سمجھا تھا۔ تم نے سب لوگوں کو سب کچھ ہی بتا دیا ہے، میرے اناؤنس کرنے کے لیے کیا رکھا ہے پھر؟ اس سے الگ ہوتے ہی مومن نے گردن موڑ کر ٹینا اور داؤد کو گھورتے ہوئے کہا تھا جو اس کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ جواباً صرف مسکرا کر رہ گئے تھے۔ قلب مومن اب اسٹیج پر اپنی کرسی سنبھال کر مائک کو ہاتھ سے ٹھیک کرتے ہوئے بات چیت کا آغاز کر چکا تھا۔ اتنے شارٹ نوٹس پر آپ سب کا یہاں آنے پر شکریہ۔ उसने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया। स्टूडियो में सरगोशियां हुई। कैमरों की तेज लाइट्स में कल्ब मोमिन ने बिलाखिर वो सरप्राइज दिया जिसे देने के लिए उसने इस मजमे को इकट्ठा किया था। मेरी अब तक की बनाई हुई फिल्म से यह बिल्कुल मुख्तलिफ और मुनफरिद फिल्म होगी, क्योंकि इसके सब्जेक्ट बेहद मुनफरिद है, सबसे ज्यादा हाई बजटेड भी होगी, क्योंकि मैं इसे यादगार बनाना चाहता हूं और कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहता। मेरी इस फिल्म का सब्जेक्ट रूहानियत है, स्पिरिचुअलिटी, कल्ब मोमिन ने बेहद ड्रामेटिक अंदाज में कहा। स्टूडियो में बैक वक्त खामोशी छाई थी। फिर स्टूडियो में सरगोशियां गूंजने लगीं। मुझे पता है आप लोगों को ऐसा लगा होगा जैसे आप लोगों ने कोई गलत लफ्ज सुन लिया है, मगर ऐसा नहीं है। मेरी ये फिल्म वाकई ही रूहानियत के बारे में होगी। कल्ब मोमिन ने जैसे वहां होने वाली सरगोशियों और चेहरों को पढ़ा था और बेहद संजीदगी से उसने जैसे अपनी बात की वजाहत करना शुरू की। उससे दो नशिस्तें छोड़कर बैठी हुई शैली ने जरा सा झुककर बराबर बैठे हुए अब्बास के कानों में सरगोशी की, ये नशे में है ना? 100% नशे में है, लगता है कोई नई ड्रग स्टार्ट की है मोमिन भाई ने। अब्बास ने बेहद फिक्रमंद अंदाज में जवाबन शैली के कानों में कहा। वो दोनों इस बातचीत के दौरान सामने स्टूडियो में बैठे मीडिया इंडस्ट्री से मुंसलिक लोगों के तासुरात को भी देख रहे थे, और वो तासुरात कोई खुशकुन नहीं थे। आज तक मुझ पे हमेशा ये इल्जाम लगता रहा कि मैं औरत को अपनी फिल्म्स में ऑब्जेक्टिफाई करता हूं। मेरी हर फिल्म सिर्फ ग्लैमर और हीरोइन के जिस्म पर शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है। मैं इस लेबल को खत्म कर दूंगा अपनी फिल्म में, और मेरी हीरोइन ना तो ग्लैमरस वार्डरोब पहनेगी, ना ही उसके कोई आइटम नंबर्स होंगे। वो सोल सर्चिंग करेगी, कुछ बड़े इश्यूज को हाईलाइट करेगी, कल्ब मोमिन कह रहा था, और शैली की आंखें जैसी खुली की खुली रह गई थी। हाय अब्बास, मेरा तो सर घूम रहा है, ये कल्ब मोमिन क्या कह रहा है? मेरा कोई डांस नहीं होगा, मैं ग्लैमरस कपड़े नहीं पहनूंगी, तो मैं करूंगी क्या फिल्म में? उसने तकरीबन रोहांसा हुए अब्बास के कानों में कहा। सोल सर्चिंग, अब्बास ने जवाबन मजाक उड़ाने वाले अंदाज में उसके कानों में कहा। सामने कुर्सियों पर बैठी हुई ऑडियंस अब कुर्सियों में पहलू बदलने लगी थी, यूं जैसे मोमिन की बातें उनके सर के ऊपर से गुजर रही थी। उन्हें बेजार करने के अलावा वो कल्ब मोमिन से वो सुनने वहां नहीं आए थे जो वो सुना रहा था। आप में से कोई भी अगर इस हवाले से मुझसे कोई सवाल करना चाहता हो तो कर सकता है, कल्ब मोमिन ने बिलाखिर इस मुख्तसर सी तमहीद के बाद सवाल और जवाब के सेशन का आगाज करते हुए कहा। बैठे बैठाए स्पिरिचुअलिटी के मौजू पर फिल्म, और वो भी उन सारे स्कैंडल्स के बाद जो पिछले चंद हफ्तों से सोशल मीडिया पर आपके हवाले से आते रहे हैं, तो क्या ये फिल्म उन स्कैंडल्स के बाद खराब होते हुए आपके इमेज को बहाल करने की कोशिश समझी जाए? पहला सवाल ही प्रिंट मीडिया में शोबिस को कवर करने वाले तेजो तर्रार सहाफी की तरफ से आया था, और पहले सवाल ने ही कल्ब मोमिन के सामने बेहद यकीनी और बदएतमादी के उस केटू को दिखा दिया था जिसका सामना उस फिल्म की तकमील के मराहल में उसे होने वाला था। वो सहाफी अख्तर की तरफ से शुरू की जाने वाली कानूनी कार्रवाई और नेहा की तरफ से मंजरेआम पर आने वाली तस्वीरों की तरफ इशारा कर रहा था। मुझे स्कैंडल्स की परवाह नहीं है, और सोशल मीडिया पर आने वाले दो चार स्कैंडल्स किसी को करोड़ों की एक फिल्म बनाने पर नहीं उकसाते, कल्ब मोमिन ने बेहद रूखे अंदाज में कहा था। लेकिन स्पिरिचुअलिटी के बारे में आखिर फिल्म बनाना क्यों चाहते हैं आप? क्या आप भी बहुत से दूसरे मुसलमान नौजवानों की तरह बॉर्न अगेन वाले मुसलमान हो गए? अगला सवाल पहले से भी तुंदो तेज था। कल्ब मोमिन ने हंसकर जैसे उस सवाल की काट को काटा था। नहीं नहीं, बॉर्न अगेन मुसलमान वाला कोई चक्कर नहीं है, मैं आज भी सिर्फ नाम का मुसलमान हूं, उसके जुमले पर स्टूडियो में हल्के कहकहे उभरे थे। और फाइनेंस कौन करेगा इस फिल्म को? यह है सबसे बड़ा सवाल। एक और सवाल आया। कल्ब मोमिन ने बेहद इत्मीनान से पहली रो में बैठे हुए बहुत सारे ब्रांड्स के ब्रांड्स मैनेजर्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से कोई भी हो सकता है, ऑप्शंस बेशुमार है मेरे पास। मेरी पहली फिल्म्स में मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा था, कितने सारे ब्रांड्स थे कि मेरे लिए ये मुश्किल हो रही थी कि मैं किस ब्रांड को ऑन बोर्ड लूँ और किसको नहीं। और यही सूरत हाल हर बार की तरह इस बार भी होगी। उसकी खुद एतमादी काबिले रश्क थी और उन ब्रांड मैनेजर्स के मुस्कुराते हुए चेहरों ने जैसे उसको तकवीयत दी थी। अगले कुछ सवाल उन लीक्ड तस्वीरों के हवाले से थे जिनका जवाब देने से कल्ब मोमिन ने माजरत कर ली थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही कल्ब मोमिन का ख्याल था हमेशा की तरह वहां मौजूद जर्नलिस्ट और मीडिया वाले उसे घेर लेंगे, कुरेद कुरेद कर उससे उस फिल्म के बारे में पूछेंगे। पहली बार उसके पास कोई नहीं आया था, वहां मौजूद लोग उस हाइटी पर फोकस किए हुए थे जिसका इंतजाम किया गया था। उसके स्टेज छोड़ने से भी पहले अपनी नशिस्तों से उठ चुके थे। किसी के जहन में रूहानियत के बारे में कोई सवाल ही नहीं है। कल्ब मोमिन को जैसे उनके रवैये से एक झटका सा लगा था। उन्हें तजस्सुस था तो ये कि वो क्यों रूहानियत पर फिल्म कर रहा था, मगर किसी को इस बात की कुरेद नहीं थी कि वो बताना क्या चाह रहा था। कल्ब मोमिन का ख्याल था जब वो जर्नलिस्ट और न्यूज मीडिया के नुमाइंदों के घेरे से निकलेगा तो उसे उन बड़े बड़े ब्रांड्स के नुमाइंदे घेर लेंगे जो उसकी दूसरी फिल्म की अनाउंसमेंट का सुनते ही शहद की मक्खियों की तरह वहां आए थे। ये भी नहीं हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरन बाद उसके लिए ये एक बड़ा धचका था जब उसने बारी बारी उन सबको स्टूडियो से निकलते देखा और उनमें से ज्यादातर उससे मिले बगैर गए थे, यूं जैसे चुपके से उसकी नजरों से ओझल होना चाहते थे। कल्ब मोमिन ने पहली बार खुद एक इंटरनेशनल ब्रांड के ब्रांड मैनेजर को रोककर इस फिल्म के हवाले से फाइनेंसिंग की बात शुरू की। सनम कब शुरू करेंगे आप, उस ब्रांड मैनेजर ने जवाबन उससे कहा था। इस फिल्म के तकरीबन 8-10 महीने के बाद, कल्ब मोमिन ने उसे बताया। ओह, इट्स अ लॉन्ग टाइम, आई लव दैट स्टोरी। और मेरा ब्रांड भी बड़ा कीन था कि वो जरा जल्दी आ जाती। सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास एक हाथ से दूसरे में मुंतकिल करते हुए उसने कल्ब मोमिन पर अपनी मायूसी जाहिर की। हाँ, वो तो डेफिनेटली आप लोग करेंगे, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो इस फिल्म में भी आ जाएं हमारे साथ, कल्ब मोमिन ने कहा था। जवाब सीधा सीधा आया था। वी वुड हैव लव टू डू दैट मोमिन, बट द थिंग इज स्पिरिचुअलिटी को मेरा ब्रांड करेगा क्या? यू नो, हम तो सेलफोन बेचते हैं तो इस स्पिरिचुअलिटी की कोई रिलेटेबिलिटी नहीं है हमारे प्रोडक्ट के साथ। तो ये फिल्म आप खुद कर लें, फिर सनम के लिए वी रोल गेम। कॉर्पोरेट अंदाज की साफ गोई में उस ब्रांड मैनेजर ने उसे बताया था। कल्ब मोमिन को जैसे चंद लम्हे यकीन नहीं आया कि ये जवाब उसे दिया गया था। आप मुझे ये कह रहे हैं कि आप मेरे प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, उसने बेसाख्ता कहा था। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कह रहे हम, सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये फिल्म हमारी टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है, सनम है, तो सनम के लिए हम कभी भी मिलकर बात कर लेते हैं। उसने मोमिन का बाजू जरा सा थपक कर उसी प्रोफेशनल अंदाज में कहा था। ओके, लेकिन हो सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए मैं आपकी बजाय कोई दूसरा ब्रांड देख लूं, मार्केट में सेलफोन भी तो बड़े होते हैं, आपका मुझे शायद सूट नहीं करता। एक्सक्यूज मी, बड़े तीखे लहजे में कहता हुआ वो उसके पास से हटा था। उसने स्टूडियो में फिल्म की कास्ट को तलाश करने की कोशिश की। शैली और अब्बास दोनों ही वहां नहीं थे। शैली और अब्बास कहां हैं, उसने अपनी तरफ आती टीना से पूछा था। वो चले गए हैं, दोनों को किसी पार्टी में जाना था, टीना ने उसे बताया था। मोमिन के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा था। वो रुके बगैर बड़े उलझे अंदाज में खाली होते हुए स्टूडियो में से निकलकर अपने ऑफिस में आ गया था और चंद ही लम्हों में दाऊद और टीना भी वहां आ गए थे। तो कैसा रहा मीडिया और ब्रांड्स का रिस्पॉन्स, कल्ब मोमिन ने हशाश बशाश नजर आने की कोशिश करते हुए कहा। होपलेस, टीना ने बेहद खुले अल्फाज में उससे कहा। قلب مومن کے ماتھے پر بل آئے۔ میرا سوال یہ ہے باس کہ ہم یہ فلم کر ہی کیوں رہے ہیں جب ہم پہلے ہی ایک فلم کی تیاری کر چکے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر ہم یہ نئی فلم کیوں شروع کرنے جا رہے ہیں؟ داؤد نے کچھ تحمل سے بات کرتے ہوئے کہا،
میری مرضی میں جس بھی پروجیکٹ پہ کام کرنا چاہوں اور کس کو پہلے کرتا ہوں اور کس کو بعد میں، یہ تم تو مجھے نہیں بتا سکتے۔
وہ اس پر برسا تھا۔ داؤد نادم ہوا، اصل میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آج پریس کانفرنس کے بعد شیلی اور عباس بھی بڑے کنفیوز تھے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ ناخوش تھے تو غلط نہیں ہوگا۔ صوفیہ نے بھی مجھ سے کہا کہ وہ اس طرح کی فلم کے ساتھ اپنے لیبل کو منسلک نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ یہ وارڈروب نہیں کر سکے گی، اور برانڈز کا رویہ تو آپ نے خود دیکھ لیا، کسی ایک نے بھی کوئی دلچسپی نہیں لی۔ ٹینا نے کچھ دھیمے انداز میں قلب مومن کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ کچھ اور بڑھکا،
کیا مطلب ہے تمہارا؟ قلب مومن کے کریئر کے سب سے بڑے پروجیکٹ میں کسی برانڈ کو دلچسپی نہیں ہے؟ ایکٹرز ناخوش ہیں، ڈیزائنر کام نہیں کرنا چاہتی؟
وہ بے حد تلخ ہوا تھا۔
بکواس ہے یہ سب، میں خود بات کر لوں گا سب سے۔ میڈیا کو خریدا جا سکتا ہے، برانڈز کو پروپوزلز اور پریزنٹیشنز بنا کر پروجیکٹ کی ویلیو سمجھائی جا سکتی ہے، اور کاسٹ کو فلم چاہیے، پیسہ چاہیے، کام مل جائے گا انہیں پھر، اور کیا مسئلہ ہے؟
بہت تک آمیز انداز میں جیسے ان کی قابلیت پر سوال اٹھا رہا تھا۔ مسئلہ روحانیت ہے مومن، ان سب لوگوں کو آپ سے روحانیت نہیں چاہیے، ٹینا نے اسے کچھ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا۔
پھر کیا چاہیے مجھ سے؟
مومن کا چہرہ سرخ ہوا۔ وہی چیز جس کے لیے آپ مشہور ہیں، گلیمر، انٹرٹینمنٹ، مختصر لفظوں میں مسالہ، ٹینا نے کہا۔
ان لوگوں کو ایک ہٹ فلم چاہیے، اور مومن کی ہر فلم ہٹ ہوتی ہے اب تک، وہ جانتے نہیں ہیں کیا ہے میرا کیلیبر۔ وہ دوبارہ ٹینا پر برسا تھا۔
انہیں کسی بھی کیلیبر کے ڈائریکٹر سے روحانیت پر بنائی جانے والی کسی فلم میں دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ جو کراؤڈ سینما فلم دیکھنے جاتا ہے وہ تفریح چاہتا ہے، تھرکنا چاہتا ہے، اچھا وقت گزارنا چاہتا ہے۔ انہیں فوڈ فار تھاٹ نہیں چاہیے، 700 کی ٹکٹ خرید کر انہیں سول سرچنگ نہیں کرنی۔
آپ کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہے؟ کیا آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کامیابیوں کے ٹریک ریکارڈ کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ فلم ہٹ نہیں ہوگی، کوئی نہیں جائے گا اسے دیکھنے،
ٹینا بے حد جذباتی انداز میں کہتی چلی گئی تھی۔ قلب مومن کی فلم فلوپ نہیں ہو سکتی،
میں ہر ایک کو غلط ثابت کروں گا جیسے ہمیشہ کرتا آیا۔
اس نے ٹینا کو مزید کچھ بولنے نہیں دیا تھا، اٹھ کر اپنے آفس سے نکل گیا تھا۔ مومن بھائی کو کسی سائیکالوجسٹ سے ملنے کی ضرورت ہے، تمہیں نہیں لگتا؟ داؤد نے اس کے باہر نکلتے ہی ٹینا سے کہا تھا۔
ہاں، اور ان قریب یہ ضرورت ہمیں بھی پیش آئے گی،
ٹینا بڑبڑائی تھی۔ قلب مومن تقریباً آدھی رات کو اپنے اپارٹمنٹ میں گھسا تھا۔ وہ ایک برا دن تھا، ساری ہمت توڑ دینے والا دن، لیکن ضد کو جیسے اور پکا کر دینے والا دن۔ وہ جتنے اچھے موڈ میں گھر سے نکلا تھا، اتنے ہی خراب موڈ میں واپس آیا تھا۔ لاؤنج کا ایل سی ڈی آن کرتے ہوئے وہ بے مقصد چینل سرفنگ کرنے لگا۔ اس کی نظریں ہر چینل پر جیسے اپنی اس پریس کانفرنس اور فلم کے اناؤنسمنٹ کی کوریج کا کوئی کلپ دیکھنا چاہتی تھی، کوئی تبصرہ، کوئی بریکنگ نیوز، کسی بھی لوکل چینل پر قلب مومن کے حوالے سے کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ پرائم ٹائم نیوز ریوائنڈ کر کے دیکھنے کے باوجود بھی قلب مومن نے پہلی بار اپنے آپ کو نو بڑی محسوس کیا۔ یہ آسانی سے جانے والا احساس نہیں تھا۔ اس نے زیر لب کچھ گالیاں بکی، اور کن کو بکی تھیں وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر وہ لوکل انٹرٹینمنٹ چینل سے غیر ملکی چینلز پر آ گیا تھا، اور تبھی اس نے ایک انڈین چینل پر انٹرٹینمنٹ نیوز میں اسکرین پر مومنہ سلطان کا چہرہ دیکھا۔ نیوز اینکر اس کی ایک تصویر دکھاتے ہوئے اس کے حوالے سے خبر دے رہی تھی، اور قلب مومن نے پلک جھپکتے میں मोमिना का चेहरा पहचाना था। विद्या बालन की जगह जिस एक्ट्रेस को क्लिफ हेक्टर की अगली फिल्म द लॉस्ट कॉज में कास्ट किया गया है वो कोई इंडियन एक्ट्रेस नहीं है बल्कि पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली एक उभरती हुई अदाकारा है, मगर पाकिस्तानी मीडिया को मोमिना सुल्तान के बारे में कुछ ज्यादा मालूमात नहीं है। मगर जहां बिल्कुल आखिरी समय में विद्या बालन ने पाकिस्तान जाने से इनकार करके इस फिल्म को खाया, वहां मोमिना सुल्तान को मिलने जा रहा है हॉलीवुड में उनका पहला बड़ा ब्रेक। अब क्या वो इस मौके से फायदा उठा पाती हैं या नहीं, ये चंद महीने में ही फिल्म के पहले ट्रेलर लॉन्च में सामने आ जाएगा। कल भी मोमिन चैनल बदल नहीं सका, प्रेजेंटर अब कोई और खबर पढ़ रही थी जबकि वो फोन पर दाऊद को कॉल कर रहा था। तुम एक एक्ट्रेस को लाए थे जिसने बहुत बदतमीजी की थी मेरे साथ, मोमिना सुल्तान ही नाम था ना उसका, दाऊद की गुनूदगी भरी आवाज सुनते ही उसने पूछा था। जी मोमिन भाई, हॉलीवुड फिल्म करने गई हुई है वो आजकल, वो गुनूदगी की कैफियत में भी कल भी मोमिन को जताए बगैर नहीं रह सका था। यहां पर तो दुपट्टा भी उतारने पर तैयार नहीं थी, हॉलीवुड के लिए सारे उसूल बदल गए होंगे उसके, कल भी मोमिन ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में दाऊद से कहा था, यूं जैसे वो मुतासर नहीं हुआ था। नहीं मोमिन भाई, एक अमेरिकन बॉर्न पाकिस्तानी की गूंगी बीवी का रोल कर रही है जिसके शौहर पर दहशतगर्दी का झूठा इल्जाम लगता है और वो खुदकुशी कर लेता है, तो फिर उसकी बीवी उसकी बेगुनाही साबित करने के लिए कानूनी जंग लड़ती है। दाऊद ने बड़े मुदाफियाना अंदाज में उसे फौरन रोल सुनाया, यूं जैसे वो उसे डिफेंड करना चाहता हो। काफी बकवास रोल है, वो कहे बगैर नहीं रह सका और उसने फोन बंद कर दिया। रिवाइंड करके उसने एक बार फिर उसी चैनल पर वो खबर सुनी थी और अजीब सी बेचैनी और जलसी का शिकार हुआ था। शायद ना होता अगर आज उसने पहले ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना भुगताई होती। वो बहुत बड़े बैनर की फिल्म थी जिसका हिस्सा बनकर वो हॉलीवुड में मौजूद थी और कल्ब मोमिन इस शौक से जैसे बाहर निकलना चाहता था कि शायद वो वाकई एक बड़े स्टार को दरियाफ्त करने का सहरा अपने सर नहीं सजा सका। वो उस वक्त सिर्फ यही सोचना चाहता था कि मोमिना सुल्तान हॉलीवुड में काम करेगी एक इत्तेफाकी चांस मिलने पर, और बस इत्तेफाकात रोज रोज नहीं होते और ना ही मोमिना सुल्तान के लिए होंगे। मगर कल्ब मोमिन की ख्वाहिश, तवक्को और अंदाजे कम अज कम मोमिना सुल्तान के बारे में बिल्कुल गलत साबित हुए थे। वो चंद सीन्स के लिए उस फिल्म का हिस्सा बनी थी और फिर वो चंद सीन्स विद्या बालन के उस रोल में तब्दील हो गए थे जो फिल्म के अहम किरदारों में से एक था, अगर मेन लीड नहीं भी था तो। और ये सब कुछ उसके अमेरिका पहुंचने के चंद दिनों के अंदर अंदर हुआ था। उससे फिल्म की कास्टिंग के वक्त दो रोल्स के लिए ऑडिशन किया गया था, मगर उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसे उस दूसरे अहम रोल के लिए रिजर्व में रख लिया गया था। वो फिल्म के डायरेक्टर को ऑडिशन में भी इस हद तक मुतासर कर गई थी और फिर विद्या बालन के इनकार ने जैसे उसके लिए सब कुछ बेहद आसान कर दिया था। वो सारे पर्क्स और प्रिविलेजेस जो विद्या बालन को मिलने वाली थी वो मोमिना सुल्तान के हिस्से में बैठे बिठाए आ गई थी ख्वाहिश किए बगैर। स्नूकर की मेज पर उस गेंद की तरह जिसे प्लेयर पॉकेट न कर सकने की पोजिशन में होता है और फिर भी वो एक इत्तेफाकी हिट लगने पर पॉकेट होकर उसे मुकाबले का फाते बना देती है। अमेरिका में अपने नए कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करते हुए वो इस बार जज्बाती नहीं थी, पिछली बार उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हुए वो सातवें आसमान पर थी क्योंकि उसे जहांगीर की जिंदगी दिखने लगी थी। अब उन पेपर्स पर जो भी लिखा हुआ था वो मोमिना सुल्तान की अपनी जिंदगी के लिए था, वो सब कुछ खुद उसे चुन रहा था, वो उन्हें नहीं। वो 4 स्टार से 5 स्टार होटल में मुंतकल कर दी गई थी, उसके लिए गाड़ी मुख्तस हो गई थी, शूटिंग के लिए उसे अलग वैनिटी वैन दे दी गई थी, उसके साथ अब एक पूरी टीम थी जो उसकी एक एक चीज को देख रही थी, खाने पीने से वार्ड्रोब तक, मेकअप से स्किन केयर और फिटनेस तक। और इस सब चकाचौंध के दरमियान कभी कभार सीन करवाते हुए उसके कानों में फैसल के जुमले गूंजते और उसे पानी पानी करते थे। तुम हाथों से थोड़ा कमा रही हो, तुम तो अपने चेहरे और जिस्म से कमा रही हो। वो कैमरे के सामने खड़े खड़े अपने लाइंस भूल जाती, वो लाइंस जो उसे साइन लैंग्वेज में अदा करनी थी, वो बार बार उन सारे जुमलों को सर से झटक कर भूल जाना चाहती थी। कुछ भी याद नहीं रखना चाहती थी, इस गूंज से बाहर निकलना चाहती थी। कोई बात नहीं, ऐसे भी सख्त लफ्ज नहीं थे, वो बार बार खुद को हील करने के लिए दोहराती, मगर जहन मारने पर तैयार नहीं था। लफ्ज सख्त नहीं थे, कहने वाला दलेर था। उसकी जुबान से निकलने पर वो खंजर बने थे। कोई और कहता तो मोमिना दूसरी तीसरी बार सोचती तक नहीं। उसे रद्द कर देने की दलेरी दिखाने के बावजूद जो हिम्मत वो अपने अंदर पैदा नहीं कर पाई थी, वो सुरैया और सुल्तान को इस रिश्ते के खत्म कर देने का इंकशाफ था। तुमने फैसल को अमेरिका जाने का नहीं बताया, वो घर आया था। सुरैया ने उसके जाने के दूसरे दिन फैसल के घर आने की इत्तला अमेरिका पहुंचने पर घर की जाने वाली पहली कॉल पर ही दे दी थी। बताया था मां, वो भूल गया होगा, उसने सुरैया को टाला। ऐसे कैसे भूल गया? सुरैया को यकीन नहीं आया। भूलता है वो, बहुत शुरू से ही आदत है उसकी। अच्छा फिर बाद में फोन करूंगी, उसने कहते हुए लाइन काट दी थी। सुरैया मां थी और वो नहीं चाहती थी कि वो दो जुमले और बोलकर चोरों की तरह पकड़ी जाए। वो ये इंकशाफ उन पर करने के लिए चंद दिन इंतजार करना चाहती थी, मगर अब हफ्ते गुजर गए थे। रोज सुल्तान और सुरैया से बात करती थी, वो रोज फैसल का जिक्र करते और वो खामोशी से सुनती रहती। उसके भेजे हुए पैसों से उसके जहेज की तैयारी की पुरजोश अंदाज में सुनाई जाने वाली खबरें भी उसके बार बार मना करने के बावजूद, और फिर ये गिले भी कि उसके अमेरिका जाने के बाद से फैसल ने कोई राबता किया न वो सुल्तान और सुरैया का फोन उठाता है, और वो हर बार उन दोनों से झूठ बोलते हुए उन्हें उसकी मसरूफियत टूर्स के किस्से सुनाने बैठ जाती है। वो हॉलीवुड में अपनी अदाकारी की काबिलियत पर काम कर रही थी। इतनी अदाकारी तो वो माँ बाप के सामने भी कर ही लेती कि वो उसकी बात पर यकीन करते। तुमसे तो राबता करता ना, सुरैया हर ऐसे मौजू का इख्तिताम एक ही सवाल पर करती, और वो बेहद ढिठाई से कहती हाँ, और सुरैया किसी बच्चे की तरह बहलकर मुतमईन हो जाती। और ऐसी ही कम हिम्मती वोक्सा के साथ फोन पर रब्ते में दिखाती। वो उससे भी ये कह नहीं पा रही थी कि फैसल और उसके दरमियान अब कुछ नहीं रहा। अक्सर फोन पर उसकी एक्साइटिंग लाइफ के बारे में कुरेदते कुरेदते फैसल का जिक्र छेड़ती और मोमिना आए बाएं शाएं करते हुए सवाल गोल करती रहती। कुछ दिन के लिए उसकी जिंदगी में एक परियों की कहानी आई थी, और वो उससे निकल आने के बाद भी खुद से जुड़े उन सब लोगों की जिंदगी को वैसे ही रखना चाह रही थी कि वो ये समझते रहते कि उसकी जिंदगी में अब सब अच्छा था, सब ठीक था। और इस सब के दौरान उसे ब्रॉडवे से अपने इंडियन एजेंट के जरिए पहली ऑफर आई थी। वो थिएटर आर्टिस्ट नहीं थी, न ब्रॉडवे उसका ख्वाब था, मगर मोमिना सुल्तान जैसे अब हर मौके का फायदा उठाना चाहती थी। वो इतना काम करना चाहती थी कि उसके पास कुछ भी सोचने के लिए वक्त ना होता, मशीन की तरह। उसने ब्रॉडवे का वो प्ले साइन कर लिया था जो अमेरिका में बसने वाले कुछ इंडियंस के बारे में था, और जिस दिन उसने उस प्ले के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उस दिन उसी इंडियन चैनल पर जिस पर कल्बे मोमिन ने मोमिना सुल्तान की पहली फिल्म के बारे में खबर सुनी थी, उसे मोमिना सुल्तान के ब्रॉडवे प्ले के बारे में भी खबर मिल गई थी। हॉलीवुड के एक बड़े बैनर के साथ की जाने वाली फिल्म इत्तेफाक हो सकती थी। ब्रॉडवे इत्तेफाक था तो मोमिना सुल्तान से ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं था। कल्बे मोमिन ने LCD पर उस खबर को देखने के बाद मोमिना सुल्तान को सोशल मीडिया पर ढूंढना शुरू किया था। वो बलाशौरी अंदाज में उसे खोज रहा था। सारी दुनिया की लानत पड़ेगी उस पर, नासपिटा मर्दूद, बालियां लेकर भाग गया मेरी, कैसे पाई पाई जोड़कर बनाई थी। झूमर ने गली के थड़े पर चौकड़ी मारे बैठे जारों की तार रोते हुए कहा था। वो तालियां और गालियां बयक वक्त दे रहा था। सुल्तान उसके सामने खामोश बैठा आध घंटे से उसके साथ होने वाले धोखे के बारे में सुन रहा था जो उसके किसी महबूब ने उसके साथ किया था। झूमर बड़ी बदकिस्मत है मोहब्बत के मामले में, इतना हुस्न और जवानी दे के भी अल्लाज मार रहा है। बस कर दे मेरे मालिक, बस कर दे। वो अब गले में पड़ा रस्सी नुमा दुपट्टा फैलाकर अल्लाह से दुहाइयां देने लगा था। झूमर, मेरे लिए कोई काम ढूंढ, उसके रोने धोने के बीच में सुल्तान ने उसे टोक कर कहा था। झूमर ने रोते रोते जैसे चंद लम्हों का तवक्कुफ किया और उससे कहा, अभी तो कोई फंक्शन नहीं है मेरे पास सुल्तान भाई, मिलता है कोई फंक्शन मुझे तो आती हूँ तेरे पास मेकअप कराने।
आए मेरी बालियां 1.5 तोले की थी।
उसने सुल्तान की बात का जवाब देने के बजाय फिर से दुहाइयां देकर रोना शुरू कर दिया था।
नहीं झूमर, मेकअप का काम नहीं, कोई और काम, सेल्समैन नहीं है चौकीदारी का,
सुल्तान ने इस बार कुछ झिझकते हुए उससे कहा था।
सेल्समैन ही में खड़ा होना पड़ता है सुल्तान भाई, चौकीदारी के लिए भागना पड़ता है। तू दोनों काम नहीं कर सकता और वो काम छोड़ना क्यों चाहता है जिससे अल्लाह तुझे रिज़्क दे रहा है?
झूमर ने हसबे मामूल अपने रोने धोने के बीच में तवक्कुफ करके उससे सवाल और जवाब किए।
वो मोमिना के ससुराल वाले बड़े अमीर लोग हैं, उन लोगों को पसंद नहीं है ये काम। मैंने लड़के से वादा किया था कि ये काम छोड़ दूंगा, अब इतने हफ्तों से कोई और काम ढूंढ रहा हूं और कोई काम मिल नहीं रहा।
झूमर अपना रोना धोना भूल कर एकदम तड़प उठा। ताली बजाते हुए उसने कहा,
क्यों लड़के की माँ बहने मेकअप नहीं कराती पार्लरों में जाकर? अमीरों की औरतें, लड़का नहीं जाता पार्लर, तो तू क्यों वादे करता फिर रहा है काम छोड़ने के? काम है तेरा सुल्तान भाई काम।
झूमर ने कहा, कर सकता हूं ये सारी बातें मैं भी झूमर, पर मोमिना के लिए कर रहा हूं सब कुछ। एक औलाद ही रह गई है मेरी, अब उसका मुस्तकबिल मेरी इस कुर्बानी से संवरता है तो संवर जाए। उसने पहले ही बड़ी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए।
सुल्तान ने बेहद मधम आवाज में उससे कहा। झूमर के गुब्बारे से मोमिना के नाम पर जैसे हवा निकल गई।
मोमिना भाजी के लिए कर रहा है ना, तो फिर तू ठीक ही है, पर वो तो खुद अमेरिका गई हुई है फिल्म करने, वो छोड़ेंगी फिल्म?
झूमर ने तजस्सुस से पूछा था।
आखिरी फिल्म है ये उसकी, बस फिर घर बैठेगी इंशाल्लाह,
सुल्तान ने अजीब सी खुशी के साथ कहा था।
आगे पीछे नौकर फिरेंगे उसके, राज करेगी,
सुल्तान ने फखरी अंदाज में कहा।
तेरे दिल को कुछ नहीं होगा?
वो डब्बा हमेशा के लिए बंद करते जिस पर उसने जहां की तस्वीर लगा रखी है तूने सालों से?
झूमर ने उसकी बात सुनने के बाद उससे बड़ा टेढ़ा सवाल किया था। सुल्तान एक लम्हे के लिए चुप हो गया था।
दिल का क्या है झूमर, दिल को समझा लेता है इंसान, उसने जहां गई तो समझा लिया, जहांगीर गया तो समझा लिया।
सुल्तान ने अजीब से अंदाज में हंसते हुए नम आंखों के साथ खड़े होते हुए कहा,
एक बुरी खबर है, दरवाजा खोलकर अंदर आती हुई टीना ने कहा था।
कल्बे मोमिन ने इस्तेहजाई अंदाज में मुस्कुराया।
अभी कोई बुरी खबर बाकी रह गई?
टीना को अंदाजा था उसका इशारा उन अखबारात और मैगजीन्स की तरफ था जिन्होंने या तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के बावजूद कवरेज नहीं दी थी, और अगर दी थी तो मजाक उड़ाने वाले अंदाज में।
टेलीफाइन ने सनम की स्पॉन्सरशिप से माजरत कर ली है,
टीना ने जैसे उसके सर पर बम फोड़ा था।
व्हाट?
कल्पी बोमन को जैसे करंट ही लग गया था। एहसन के साथ उसकी फिल्म की स्पॉन्सरशिप के लिए डील साइन कर ली है उन्होंने,
टीना ने जैसे एक और धमाका किया। ये कर कैसे सकते हैं वो?
मीटिंग के लिए टाइम लो उनसे फौरी तौर पर। कल्बे मोमिन शदीद परेशान हुआ था, उन्हें अगले 6 महीने में कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना था और आपने सनम को होल्ड पर डाल दिया तो ब्रांड बैकआउट कर गया। टीना ने जैसे उसे ब्रांड की नाराजगी की वजह बताई।
कर तो रहा हूं बड़ा प्रोजेक्ट उसी टीम के साथ, उससे बड़ी प्रोडक्शन,
वो बेहद परेशानी के आलम में बोला था।
वो मजहब से रिलेटेड कुछ नहीं करना चाहते, टीना ने कहा।
मजहब? ये रूहानियत है, मजहब की बात नहीं है, और रूहानियत तो यूनिवर्सल थीम है।
वो जैसे टीना को ही वो वजाहतें देने लगा था जो उसे शायद ब्रांड को देनी चाहिए थी।
बॉस उनके लिए मजहब और रूहानियत एक ही चीज है, टीना ने दो टोक अंदाज में उसे कहा।
क्या एक ही चीज?
कल्बे मोमिन झिझलाया।
फंडामेंटलिज्म, बुनियाद परस्ती,
टीना ने साफ गोई से कहा। कल्बे मोमिन उसका चेहरा देखकर रह गया।
यू किडिंग मी? ये सब मैं नहीं कह रही, उनकी टीम ने मुझसे कहा है उन्हें मजहब और रूहानियत के पास से भी नहीं गुजरना, उन्हें मजहब और रूहानियत के पास से भी नहीं गुजरना।
उनके लिए अनटचेबल सब्जेक्ट है, ये टैबू है उनके ब्रांड के लिए। वो उसे फिर समझाने लगी थी, आप 10 मीटिंग्स कर लें उनके साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत क्लियर हैं इस मामले में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड है ये, और आपको पता है कैसे चलती है ये, इसीलिए आपसे कह रही थी ये रिस्क ना लें, बहुत बड़ा रिस्क है। कल्बे मोमिन ले सकता है ये रिस्क और लेगा, वो भी अपने नाम का एक ही था, करोड़ों की डील डूब जाने पर भी उसी तरह था। मेरे पास स्टार्स हैं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स, कोई भी ब्रांड आ जाएगा मेरे साथ, टेलीफोन जाए पहाड़ में। वो गजबनाक हो रहा था। टीना कुछ देर खामोश रही, फिर उसने मध्यम आवाज में उससे कहा, उन स्टार्स से एक बार बात कर लें आप। कल्बे मोमिन ने ना समझने वाले अंदाज में उसका चेहरा देखा, क्या बात कर लूं। वो वाकई नहीं समझा था कि क्या वो फिल्म करेंगे भी या नहीं। टीना ने अपने लहजे को हत्तुल मकदूर नॉर्मल रखने की कोशिश की थी, उसे अब कल्बे मोमिन पर तरस आने लगा था। वो एक ही दिन में उस पर बुरी खबरों का अंबार नहीं लादना चाहती थी, लेकिन शायद कल्बे मोमिन के सितारे गर्दिश में आ गए थे, या वो खुद गर्दिश में आ गया था। जान, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूं कि पहले सनम को शूट कर लेते हैं, जिस पर इतना काम करके रखा है, फिर इस फिल्म पर भी काम कर लेंगे। देखो ना, अभी तो प्री प्रोडक्शन होनी है इस फिल्म की, और पता नहीं क्या होना है। स्पिरिचुअल फिल्म बनाना आसान थोड़ी है। शैली ने अपने लहजे को हत्तुल मकदूर शह बनाते हुए उससे कहा था। टीना ने शैली के एतराजात कल्बे मोमिन को पहुंचा दिए थे, और वो उससे मिल रहा था। हो जाएगा सब काम, तुम परेशान मत हो, मैं उन्हीं डेट्स में शूट करूंगा जिनमें मैंने सनम को शूट करना था। देर हुई भी तो चंद हफ्तों की होगी, महीनों पर नहीं जाएगी बात, कल्बे मोमिन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा था। लेकिन सनम को पहले शूट कर लेने में एतराज क्या है तुम्हें जान? शैली उसकी तसल्ली से जैसे मुतमईन नहीं हुई थी। मैंने तुम्हें बताया है शैली, मुझे ये फिल्म सनम से पहले शूट करनी है, तुम्हें क्यों एतराज है इस पर? उसने जवाबन शैली से कहा था। मुझे नहीं, सभी को एतराज है जान, देखो बुरा मत मनाना, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही कि बैठे बिठाए सनम को होल्ड पर क्यों डाल दिया तुमने, और फिर एक स्पिरिचुअल फिल्म के लिए। जान, इतना एक्सपेरिमेंटल क्यों हो रहे हो तुम? कल्बे मोमिन उसका चेहरा देख रहा था। ये वो शैली थी जो उससे किसी फिल्म के हवाले से सवाल तक नहीं करती थी। एतराज तो दूर की बात थी, जो कल्बे मोमिन की बनाई गई हर चीज में मुफ्त भी काम करने पर तैयार हो जाती थी, और आज वो उसे कह रही थी कि वो एक्सपेरिमेंटल हो रहा था। ये सिर्फ मेरे एतराजात नहीं है, अब्बास को भी बड़ी शिकायतें हैं तुमसे। शैली उसकी नजरों से जैसे कुछ गड़बड़ाई थी, और उसने कहा था, अब्बास को कह देना कि उसे ज्यादा एतराज है तो ना करे वो काम, तुम्हें एतराज है तो तुम भी सोच लो। कल्बे मोमिन की अब जैसे हिम्मत जवाब देने लगी थी। नहीं, वो स्क्रिप्ट नहीं है और कहानी का कोई आइडिया नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूजन है, वरना ये तो नहीं कह रहे कि काम नहीं करेंगे जान। शैली उसके उखड़े अंदाज में यकदम गड़बड़ाई थी, और उसने वजाहत देने वाले अंदाज में एक नया जवाब देने की कोशिश की। उसके सामने जैसे आगे कुआं पीछे खाई वाली सूरत हाल थी। वो कल्बे मोमिन को खफा करती तो फिर सिर्फ इस फिल्म से नहीं, कल्बे मोमिन की आने वाली हर फिल्म से आउट होती। स्क्रिप्ट पर बैठ रहा हूं इस हफ्ते, बगैर स्क्रिप्ट के फिल्म नहीं करता कोई, इतना उल्लू का पट्ठा नहीं हूं मैं, कल्बे मोमिन ने उसी झंझलाते हुए अंदाज में कहा। और जब तुम रूह की बात करोगे तो ये सारे लोग जिन्हें तुम दोस्त और साथी कहते हो तुम्हें छोड़ जाएंगे। अब्दुल अला के जुमले उसे पिछले कई दिनों से हॉट कर रहे थे। चल सुल्तान, फैसल की तरफ चलना है आज। सुल्तान घर में दाखिल हुआ ही था जब सुरैया चादर लपेटे हुए अंदर कमरे से बाहर निकल आई थी। किस लिए? सुल्तान हैरान हुआ था। इतने हफ्ते हो गए, कोई राबता नहीं हुआ, मेरा तो अब दिल होलने लगा है। सुरैया उसे अपनी परेशानी बता रही थी। मोमिना कहती है वो मुल्क से बाहर है, मगर आखिर कितनी देर बाहर रहना है उसने? आज जाएंगे, उसके घर और उसकी अम्मी से मिलकर आएंगे, अगर फैसल ना मिला तो भी। सुरैया ने दो टोक अंदाज में कहा था। हाँ ये ठीक कहा तूने, लेकिन मोमिना से मशवरा ना कर ले पहले। सुल्तान ने उसकी बात से हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन फिर जैसे मतामिल हुआ। कोई जरूरत नहीं है इसकी, अब माँ बाप है उसके, वो माँ बाप नहीं है हमारी। चल रिक्शा पकड़, पता है ना तुम्हारे पास। सुरैया ने उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो देने की भी जहमत नहीं की थी, वो बैरूनी दरवाजे की तरफ चल दी थी। हाँ वो जिस दिन अपनी माँ को लाया था तो देकर गया था, मेरे पास रखा है, अंदर से लाता हूँ। सुल्तान को यकदम याद आया तो वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। हाँ और देख फल और मिठाई भी लेने हैं, रास्ते में पहली बार उनके घर जा रहे हैं। उसने जाते हुए सुल्तान को टोका। हाँ हाँ वो तो लेंगे, खालिया थोड़ी जाएंगे बेटी के ससुराल, सुल्तान ने हंसते हुए कहा था और अंदर कमरे में चला गया। चंद मिनटों बाद वो नमूदार हुआ तो एक दूसरे लिबास में मलबूस था और बड़े फातिहाना अंदाज में उसने एक कागज हवा में लहराया था। मिल गया उसका पता। सुरैया का चेहरा भी चमका। और देखो चाय पीने ना बैठ जाना, वो लोग तो खाने के लिए भी कहेंगे मगर हमने नहीं बैठना, समझे। सुरैया अब उसके साथ बैरूनी दरवाजे की तरफ जाते हुए जैसे उसे समझा नहीं रटवा रही थी। हाँ हाँ जानता हूं सब, बेटी का ससुराल है, कहाँ कुछ खाने बैठूंगा, इतना भी कमाकल न समझ तू सुल्तान को। सुल्तान ने उसे जैसे यकीन दिलाया था कि वो जानता था कि उसे वहां किस तरह बर्ताव करना था। एक रिक्शा पकड़कर ढेर सारी मिठाई और फल लेते हुए वो डेढ़ घंटे की मुसाफत तय करते हुए शहर के दूसरे कोने में जब फैसल के घर पहुंचे थे तो शाम हो चुकी थी और फैसल का घर बर्की कमकमों से रोशन था। रिक्शे से शॉपर पकड़े उतरते हुए सुरैया और सुल्तान ने बड़ी हैरत से उस घर को देखा था जहां यकीनन उस वक्त कोई फंक्शन हो रहा था। एड्रेस तो यही बताया था उसने, सुल्तान ने कागज के टुकड़े पर एड्रेस देखा और फिर नेम प्लेट और उसके बराबर में लिखे हुए नंबर को। ये घर पर बत्तियां क्यों लगी हुई हैं? सुरैया कुछ उलझी थी, कोई पार्टी हो रही है शायद, सुल्तान ने अंदाजा लगाया। गलत पते पर ना आ गए हो, पता दोबारा देख, कोई पार्टी होती तो हमें क्यों ना बुलाते, वो रिश्तेदार हैं अब तो हम। सुरैया जैसे बेचैन हुई थी। पूछता हूँ चौकीदार से, सुल्तान ने आगे बढ़ते हुए घर के खुले दरवाजे के पास खड़े चौकीदार को देखते हुए कहा, ये फैसल साहब का घर है क्या? सुल्तान ने चौकीदार से सलाम दुआ के बाद कहा, हाँ जी आप उनकी शादी में शरीक होने आए हैं? चौकीदार ने जवाबन उन दोनों से पूछा था। सुल्तान और सुरैया ने एक दूसरे को देखा, उन्हें लगा उन्हें सुनने में गलत फहमी हुई थी। फैसल की शादी? सुल्तान ने बमुश्किल थूक निगलते हुए कहा था, हाँ जी आज मेहंदी है उनकी, आप चले जाएं अंदर। चौकीदार ने हाथ का इशारा अंदर पोर्च की तरफ करते हुए कहा था और सुरैया के हाथ में पकड़ा सेबों का शापर जमीन पर गिर गया था। सुल्तान को जैसे सांप सूंघ गया था। फैसल के घर के गेट के बाहर मार्बल के सफेद फर्श पर सुर्ख सेब हर तरफ लुढ़क रहे थे और सुरैया और सुल्तान उस बुका नूर बने हुए घर को हसरत से देख रहे थे जो उनकी बेटी का नसीब था और अब किसी और का नसीब हो गया था। टीना और दाऊद ने आप लोगों को बता दिया होगा कि मुझे किस तरह का सब्जेक्ट चाहिए इस फिल्म के लिए। कल्ब मोमिन ने उन तीन नौजवान स्क्रीन प्ले राइटर से कहा था जो इस वक्त उसके ऑफिस में उसकी फिल्म के स्क्रिप्ट और कहानी के वन लाइनर्स डिस्कस करने के लिए आए बैठे थे। वो तीनों फिल्म इंडस्ट्री में नए नहीं थे, मुख्तलिफ फिल्म्स लिख चुके थे और कल्ब मोमिन का ख्याल था टीना और दाऊद की ब्रीफिंग के बाद वो जब उसके पास इस सेशन के लिए आएंगे तो बहुत सारे आइडियाज लेकर आएंगे और वो उन आइडियाज को सुनना चाहता था। मुझे असल में कोई रेफरेंस चाहिए था। उन तीन राइटर्स में से वाहिद लड़की ने तमहीद बांधते हुए अपनी वजाहत दी। कैसे रेफरेंस? कल्ब मोमिन ने संजीदगी से पूछा। यानी किसी फिल्म किसी किताब का रेफरेंस, जिस तरह की कहानी आपको चाहिए, उस लड़की ने मजीद कहा। बिल्कुल ये हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी हमें, एक दूसरे राइटर ने भी उस लड़की की हां में हां मिलाते हुए कहा। कुछ आइडियाज लाए तो हैं हम, लेकिन रेफरेंस मिल जाए तो ज्यादा बेहतर आइडिया आ सकते हैं। तीसरे राइटर ने भी पहले दोनों राइटर की बात की तायद की। लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं पहले आप लोगों के आइडियाज सुनूं, समझ तो सकूं कि आप किस फॉर्मेट पर सोच रहे हैं। मोमिन ने जवाबन उनसे कहा था। कमरे में इस वक्त उन तीनों राइटर्स और मोमिन के साथ टीना और दाऊद भी थे, जो अपने लैपटॉप खोले उस स्टोरी टेलिंग सेशन के मिनट्स ले रहे थे। पहले राइटर ने मोमिन की बात पर अपना राइटिंग पैड निकाल लिया और उसे खोलते हुए उसने अपना आइडिया डिस्कस करना शुरू किया। ये एक बड़ी ही स्पिरिचुअल कहानी है, उसने दांत तलब अंदाज में तमहीद बांधते हुए बारी बारी मोमिन, टीना और दाऊद को दांत तलब अंदाज में देखा। वो तीनों बेतासुर चेहरे के साथ उसे देख रहे थे। एक इंतहाई स्पिरिचुअल और उतनी ही कमर्शियल कहानी। राइटर ने अगला ड्रामाई जुमला अदा किया। तवायफों के एक कोठे से कहानी शुरू होती है। दो तवायफों का दिल एक सैयद घराने के खूबरू गद्दी नशीन पर। इससे पहले कि वो अपना दूसरा जुमला मुकम्मल कर पाता, कल्ब मोमिन ने बेहद स्पार्ट लहजे में उसकी बात काट दी। नेक्स्ट आइडिया प्लीज, राइटर ने कुछ शर्मिंदा सा होकर सफा पलटते हुए कहा। अच्छा, मेरा ख्याल था ये आइडिया तो जरूर ही पसंद आएगा आपको, लेकिन चलें दूसरा सुनाता हूं। उसने कहते हुए कागज पर नजर दौड़ाई और फिर कहना शुरू किया। एक मजार पर कवाली हो रही है और वहां एक लड़की अपने महबूब के लिए मन्नत मानने आती है। उस लड़की का महबूब कल्ब मोमिन ने उसे एक बार फिर टोका, मुझे रूहानियत पर फिल्म चाहिए। ये रिवायती कहानी नहीं चाहिए। बाजार, कवाली, महबूब, इसमें रूहानियत कहाँ है? उसने जैसे चैलेंज करने वाले अंदाज में राइटर से कहा और राइटर ने जैसे बुरा मनाया। सॉरी मोमिन साहब, अगर आप बता दें कि आपको प्रिसाइजली चाहिए क्या कहानी में, तो हमें भी आसानी हो जाएगी। बता तो रहा हूं कि मुझे रूहानियत चाहिए। और रूहानियत क्या है? इस बार उस राइटर ने कुछ झिझकते हुए पूछा। एक लम्हे की खामोशी के बाद मोमिन ने कहा, मुझे अल्लाह से ताल्लुक की कोई कहानी चाहिए। अल्लाह से ताल्लुक की वजाहत कर दे तो हमें और भी आसानी हो जाएगी। इस बार ये बात कहने वाला दूसरा राइटर था। अल्लाह से ताल्लुक, मोमिन कहते हुए गड़बड़ाया। हां, मतलब अल्लाह से ताल्लुक है क्या, और वो क्या रूहानियत है जो आप इस कहानी में चाहते हैं? उस राइटर लड़की का सवाल बिल्कुल वाज़े था। इसके बावजूद मोमिन सिर्फ उसका चेहरा देखता रहा। फिर उसने कहा, मैं राइटर नहीं हूं, आप राइटर हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्टर क्या डिमांड कर रहा है। वो झुंझलाया था। डायरेक्टर के पास हमेशा रेफरेंसेस होते हैं, जैसे आप भी हमें फिल्म्स का बताकर समझाते हैं कि मुझे फलां फिल्म का वो वाला किरदार चाहिए या रियल लाइफ का। तो ऐसे ही आप समझा दें कि रूहानियत है क्या, और वो कौन से किरदार हैं जिनकी कहानी हम बने। मगर उससे भी बड़ा सवाल है कि अल्लाह से ताल्लुक है क्या, उसी राइटर ने बात जारी रखते हुए कहा था। कल्ब मोमिन ने उन सबको देखा, फिर बड़ी रवानी से कहने लगा, रूहानियत यानी अल्लाह से ताल्लुक, जैसे वो बेरब लफ्जों की गर्दान करने लगा। जहन और दिल की स्लेट बैक वक्त साफ थी, वहां कहीं भी कुछ लिखा हुआ नहीं था जो जुबान पर लफ्ज बनकर आ जाता। उसके बावजूद कि अंदर गुंबद की बाजगश्त की तरह वो लफ्ज गूंज रहे थे, रूहानियत यानी अल्लाह से ताल्लुक, जैसे रूहानियत यानी क्या और अल्लाह से ताल्लुक किस जैसा। दो सवाल थे और दोनों के जवाब उसकी सारी काबिलियत देने में नाकाम थी। जिस्म उन सवालों के जवाब दे ही नहीं सकता था जब तक वो रूह से खाली रहता। उस लम्हे पहली बार कल्ब मोमिन को अपने अंदर का वो खालीपन महसूस हुआ था जो दादा बार बार उसको बताने की कोशिश करते थे, तो उसे गुस्सा आता था। तुम्हारे पास रूह नहीं है कल्ब मोमिन, तुम रूहानियत के बारे में क्या फिल्म बनाओगे, दादा ने उससे कहा था। तुम्हारी रूह को वो कामयाबी खा गई है जिसमें फलाह नहीं है। दुनिया को चुना हुआ है तुमने, सब कुछ दुनिया के लिए, सब कुछ जिस्म के लिए। रूह कैसे न मरती तुम्हारी, अजीब शौक के आलम में उन पांच लोगों की नजरें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए कल्बे मोमिन ने सोचा था, क्या वो वाकई रूह के बगैर था? और दादा सच कहते थे, और अगर ऐसा था तो ऐसा कब हुआ था? कि कोई तारीख, कोई दिन, कोई लम्हा जब वो सिर्फ जिस्म रह गया था। अंदर सब कुछ खाली, कोई उलझन सुलझ नहीं रही थी, कोई आवाज कोई जवाब नहीं दे रही थी।
हम इस पर एक दो दिन तक दोबारा सिटिंग करते हैं, दोबारा रेफरेंस ढूंढता हूं मैं, ताकि आसानी हो। किरदार, कहानी,
उसने उन सब से नजरें चुराते हुए अजीब बेरब्तगी से कहा था। टीना जैसे उसकी मदद को आई थी। हाँ, ये बेहतर रहेगा, दोबारा सिटिंग करते हैं। आज ये तो क्लियर हो गया कि टिपिकल रिवायती कहानी नहीं चाहिए, कोई नई चीज चाहिए। अगली मीटिंग में और भी क्लैरिटी आ जाएगी, उसने सूरत हाल संभालने की कोशिश करते हुए उन राइटर्स से कहा था। और अगले कुछ मिनटों में मोमिन का ऑफिस खाली हो गया था। वो भी ज्यादा देर वहां नहीं रुका था। उसका जी हर चीज से अजीब अंदाज में उचाट हुआ था। उसका अपार्टमेंट भी उसी की तरह खामोश और खाली था, और यह एहसास कल्बे मोमिन को आज पहली बार घर वापस आकर हुआ था। वो लाउंज में ही बैठ गया था, इहदिन सिरातल मुस्तकीम की उसी कैलीग्राफी के नीचे, मगर आज पहली बार उसकी पुश्त उस कैलीग्राफी की तरफ नहीं थी, वो दूसरे सोफे पर था, उस कैलीग्राफी के बिल्कुल सामने। और वो आयत जैसे उसको चैलेंज कर रही थी। उसे देखते हुए वो अब्दुल अला की महारत को सराह रहा था। उसका हुनर उतना बेअजीब था जितना इंसानी आंख ढूंढ सकती। अल्लाह से ताल्लुक, वो सवाल फिर उसके अंदर गूंजने लगा था। ऐसा मुश्किल सवाल तो नहीं था कि इस तरह गूंगा हो जाता मैं, या शायद इसलिए मुश्किल हो गया कि मेरा और अल्लाह का ताल्लुक टूट गया है। ताल्लुक रहा ही नहीं। जिंदगी में पहली बार वो अपनी जात के सामने एतराफ कर रहा था। वो बात मान रहा था जो वो दादा के सामने मानने से इनकारी था। कैसे टूटा, कब टूटा, मुझे क्यों पता नहीं चला? अजीब शौक और बेयकीनी के आलम में वो अपने आप से सवालात कर रहा था, और जवाब कहीं नहीं था। मोमिन भाई, शुक्र वहां आया था। और मोमिन ने उसकी आवाज सुनते ही बेहद दुरुस्तगी से उसे देखे बगैर मजीद कुछ कहने से रोका था। खाना नहीं खाना मुझे, और तुम अब मुझे डिस्टर्ब मत करना। शकूर कुछ नर्वस सा उसके सामने आया था।
मैं तो बस ये देने आया हूं मोमिन भाई। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा सा डिब्बा था।
ये क्या है? वो झुंझलाया था।
ये दादाजी ने भेजा है, आज ही आया है, कह रहे थे कि आपको दे दूं।
शकूर ने डरते डरते मेज पर वो डब्बा रखा था।
खोलूं?
उसने मोमिन से कहा। नहीं, मैं खोल लूंगा, तुम जाओ, मोमिन ने कहा। शकूर बर्क रफ्तारी से गायब हुआ। मोमिन कुछ देर तक मेज पर धरे उस डब्बे को देखता रहा, जिस पर उस खूबसूरत जानी पहचानी मोतियों जैसी लिखाई में उसका पूरा नाम और पता लिखा हुआ था, और फिर भेजने वाले का नाम और पता। वो अब्दुल अला की कोई खताती नहीं हो सकती थी। उसकी सालगिरह के अलावा वो उसे पिछले सालों में कभी कोई खताती नहीं देते रहे थे, और खताती इस शक्ल और साइज के डब्बे में नहीं हो सकती थी। कल्बे मोमिन ने याद करने की कोशिश की कि क्या वो कुछ भूल गया था दादा के घर पर, जैसे उन्होंने लौटाया था। याद नहीं आया, मगर उसे यकीन था वो कोई भूल कर रह जाने वाली चीज ही थी। उसने डब्बे की पैकिंग खोलने की कोशिश की। वो बड़ी एहतियात से पैक किया गया था। पैकिंग को बारी बारी हटाकर उसने डब्बा खोल लिया। उसका लेटर बॉक्स था, लकड़ी से, हाथ से बना हुआ एक बहुत पुराना लेटर बॉक्स। कल्बे मोमिन साकत रह गया था। उस लेटर बॉक्स को हाथ में पकड़े, वो सिरा जिसे वो ढूंढता फिर रहा था वो मिल गया था। रूह को कब मारा था, अल्लाह से ताल्लुक कब टूटा था? लेटर बॉक्स का ढकना खोलते हुए उसने अंदर देखा, वो खतों से भरा हुआ था। उसके हाथ से लिखे हुए छोटे छोटे लफाफों वाले खत उसने हाथ बढ़ाकर लेटर बॉक्स के अंदर से सारे खत निकाल कर मेज पर ढेर कर दिए। उस हाथ की लिखाई में हर लिफाफे पर अल्लाह और उसका नाम लिखा हुआ था। अल्लाह के नाम, अल्लाह का घर, कल्बे मोमिन। कल्बे मोमिन ने अपने होंठ भींच लिए, यूं जैसे वो उनकी कपकपाहट रोकना चाहता था। यादों का एक सैलाब था जो उसे बहाए ले जा रहा था। जब वो तुर्की में था तब भी दादा ने उसे ये लेटर बॉक्स एक रात दिखाया था और उसे देने की कोशिश की थी, और तब उसने न लेटर बॉक्स को हाथ लगाया था न खतों को। यूं जैसे वो उनको छूता तो पत्थर का हो जाता। तुम्हारे खत और तुम्हारा लेटर बॉक्स है कल्ब मोमिन। दादा को लगा था शायद उसे याद नहीं रहा। जानता हूं दादा, मोमिन ने बेतासुर चेहरे के साथ उनसे कहा था। बेवकूफ था तब मैं, समझता था खत लिखूंगा तो अल्लाह जवाब देगा। उसने दादा के सामने जैसे अपना ही मजाक उड़ाया था। क्या नहीं दिया अल्लाह ने जवाब? इन खतों के बाद ही तो मैं तुमसे मिल पाया था। दादा ने बेहद मोहब्बत से उसे टोका था, और मैं समझा था अल्लाह वाकई आपको कह रहा था कि मुझे जवाब दें। मोमिन ने गहरा सांस लेकर तब उनसे कहा था, जैसे खुद पर अफसोस किया था। तुम बड़े मासूम थे मोमिन, फिर साथ कितनी बड़ी नेकी की थी तुमने ये खत लिखकर, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। तुम्हारे खत उसने जहां ने मुझे भेजे तो मुझे लगा अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से मेरे सवालों के जवाब देकर मेरे दिल की गिरह खोली थी। वो रोना शुरू हो गए थे और कल्ब मोमिन को उनके नांसों की समझ आई थी न उस एहसास की जो वो उसको गिनवा रहे थे। अब रो क्यों रहे हैं? लेकिन वो अब्दुल अल्लाह के आंसू देखकर बेचैन जरूर हुआ था। ये तुम्हारे लिए रखा है मैंने, शायद तुम्हारे दिल की गिरहें भी इसी तरह खोल दे जैसे मेरी खोल दी। उन्होंने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय अपने आंसू पोंछते हुए वो लेटर बॉक्स उसे थमाने की कोशिश की थी, मगर मोमिन ने उनके हाथ परे कर दिए थे। अब कोई सवाल नहीं है मेरे अल्लाह से, सब जवाब जिंदगी और दुनिया ने दे दिए हैं मुझे। वो उनके पास से कहकर उठकर चला गया था, मगर अब जब वो उस लेटर बॉक्स और खतों को सामने रखे बैठा था तो उसे लगा दादा ने ठीक कहा था, और वो बिल्कुल सही वक्त पर उसके पास आया था। जो सवाल अल्लाह जहन में डालता है उसका जवाब अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं होता, किसी दुनिया किसी जिंदगी के लम्हे के पास नहीं। कल्ब मोमिन ने पहला खत उठाया। उस लिफाफे पर फूल और सितारे बने हुए थे, बहुत से रंगों की पेंसिलों से जिनका रंग फीका पड़ गया था। उसकी आंखों में नमी आई। वो फूल उसने हुस्न जहां से बनाने सीखे थे और सितारे ताहा से। लिफाफे पर वो हमेशा फूल एक कोने में बनाता था, सितारे दूसरे कोने में, और दरमियान में ढेर सा फासला। वो जैसे अपने मां बाप की तकदीर और जिंदगी कागज पर खींचकर अल्लाह के नाम भेजता रहा था। मेरे प्यारे अल्लाह, मेरा नाम कल्ब मोमिन है, मैं 8 साल का हूं और अपनी मम्मी के साथ रहता हूं। वो इससे आगे नहीं बढ़ पाया, उसकी आंखें अब भीगने लगी थी। कोई फिल्म थी जो आंखों के सामने चलने लगी थी। अपने माँ बाप के साथ गुजारा हुआ बचपन, वो खूबसूरत जिंदगी, और फिर वो सानिया। कल्ब मोमिन ने दूसरा खत उठाया, उसमें उसकी तस्वीर लगी हुई थी जिसे गूंद के साथ कागज पर चिपकाया हुआ था। ये वो तस्वीर थी जो उसने अल्लाह ताला को भेजी थी ताकि वो उसे पहचान ले। कल्ब मोमिन तस्वीर में नजर आने वाले उस 8 साला बच्चे को यूं देख रहा था जैसे उसे पहचान ही ना पा रहा हो। क्या वो वही था? क्या वो ईमान उसी का था? क्या वो तहरीर उसकी थी? क्या वो जिंदगी उसने गुजारी थी? क्या ये सारे लफ्ज जुमले बातें वही कल्ब मोमिन की थी? कुछ टूट रहा था उसके अंदर, जो बुत था, तलिस्म था, फरेब था। उसकी अपनी जात, अपनी खुदनुमाई,
खुद सताईशी कामयाबी का कुछ जुड़ रहा था उसके अंदर, जो वही ईमान था, जो उसका खासा था, उसका असासा था, वही ताल्लुक था जिसे वो खोजने बैठा था, अल्लाह से बंदे का ताल्लुक। क्या था अल्लाह से बंदे का ताल्लुक? क्या था अल्लाह से कल्बे मोमिन का ताल्लुक? और क्यों टूटा था? उसके पास उस सवाल का जवाब था। वो ताल्लुक जिसकी वजह से जुड़ा था, उसकी वजह से टूटा था। उसकी मां हुस्ने जहां की वजह से, उसकी पारसाई ने उसे मोमिन किया था, उसके गुनाह ने उसे काफिर, और उसका वो गुनाह कल्ब मोमिन अल्लाह और हुस्ने जहां के अलावा अगर किसी चौथे और पांचवें शख्स को पता था तो वो ताहा था, या सुल्तान, या फिर अब्दुल अला। अब्दुल अला क्यारी में एक छोटा पौधा लगा रहे थे, इतने नमाक और एहतियात से कि उन्हें कल्ब मोमिन के आने का पता ही नहीं चला। वो उनके अकब में खड़ा उन नन्हे नन्हे पौधों को देखता रहा जो उन्होंने क्यारी में लगाए हुए थे। कैलीग्राफी उनकी पहली मोहब्बत थी, बागबानी दूसरी। इस बार आपको मेरे आने का पता नहीं चला? बहुत देर खामोशी से उन्हें देखते रहने के बाद कल्ब मोमिन ने मध्यम आवाज में कहा था। वो बुरी तरह हड़बड़ाकर पलटे थे और फिर जैसे उसे देखकर हैरान रह गए थे। दरवाजा खुला था क्या? वो उसे गले लगाते हुए पूछ रहे थे। आपका दरवाजा तो हमेशा ही खुला रहता है, मोमिन ने जवाबन मुस्कुराते हुए उनसे अलग होकर कहा था। वो अजीब सी खुशी से हंसे। इस बार तुम्हारे आने का इल्म नहीं हो सका, तुम तुर्की में शूटिंग करने आए हो, उन्होंने उससे पूछा था। वो जैसे उसे सामने खड़े देखकर बागबानी भूल गए थे। नहीं, लेटर बॉक्स मिला था, अपने खत पढ़कर आपसे मिलने आया हूं, उसने जवाबन दादा से कहा था। अब्दुल अला ने गहरा सांस लेते हुए कहा, मैं अब सारा सामान संभालते संभालते थकने लगा हूं, सोचा जो जिसका असासा है उसे सौंप दूं। बहुत कुछ और भी है जो तुम्हें सौंपना है, उन्होंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा था। कल्ब मोमिन का चेहरा उन्हें कुछ अजीब लगा था, कुछ बदला हुआ था उन नक्शों निगार में। आपसे जिस फिल्म का वादा किया था वो फिल्म अनाउंस कर आया हूं, मोमिन ने उन्हें बताया। वो हैरान हुए। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, वो दादा के जुमले पर खफा नहीं हुआ था, मुस्कुरा दिया था। मुझसे आपकी तवक्कात ना होने के बराबर है बस। अब ठीक कहते हैं दादा, उसने अजीब एतराफी से अंदाज में कहा। क्या? अब्दुल अला हैरान हुए। मुझे अल्लाह और उसके ताल्लुक के बारे में कुछ पता नहीं, ना ही मैं रूहानियत को समझता हूं, कुछ मसला हो गया है मेरे साथ। आपकी बातें मेरे जहन से निकलती नहीं है, आपने कभी मुझसे ऐसी बातें नहीं की जैसी आप करने लगे थे। क्यों दादा? वो उनसे पूछ रहा था। मेरी गलती थी, अब्दुल अला ने जैसे अपनी निदामत का इजहार किया। आपको पता है अल्लाह से मेरा ताल्लुक कब टूटा? उसने रंज के आलम में दादा से कहा था। जब मुझे यह पता चला कि अल्लाह माफ नहीं करता, जवाब नहीं देता। मैं इतने खत लिखता था अल्लाह को, इतने खत, कुछ बदला ही नहीं मेरी जिंदगी में, सब कुछ बुरे से बुरा होता गया। वो रंजीदगी से कह रहा था। वो रब था, उसे कल्ब मोमिन की कुछ तो परवाह करनी चाहिए थी, एक इंसान की गलती थी और हम सब तबाह हो गए, वो गम से कह रहा था। अल्लाह माफ करता है मोमिन, हम इंसान नहीं करते, ये सारे गढ़े जिसमें हम गिरे होते हैं ये अल्लाह ने नहीं खोदे, हमारे खोदे हुए हैं। अल्लाह तो ऐब पर पर्दा डालने वाला है, बख्शने वाला है। उसकी सबसे बड़ी सिफत ही बंदे से उसकी मोहब्बत है, अब्दुल अला उसे समझा रहे थे। फिर मेरी मां को क्यों माफ नहीं किया अल्लाह ने? मैंने तड़पते हुए देखा उन्हें, माफी मांगते देखा। क्यों अल्लाह ने मेरे पाप के दिल में रहम नहीं डाला मेरी मां के लिए? कितना बड़ा गुनाह था वो जिसकी सजा हम तीनों ने काटी। वो अजीब तकलीफ के आलम में कह रहा था, जानता हूं मेरी मां गुनाहगार थी, मगर अब्दुल अला ने मोमिन की बात काटी। नहीं मोमिन, हुस्ने जहां गुनाहगार नहीं थी। तुम्हें पता है माफ किसने नहीं किया था? मैंने। जिद बांधी थी और जिद मेरी ही औलाद खा गई। तुम सबकी जिंदगियों को बर्बाद करने वाला मैं था, अब्दुल अला नम आंखों के साथ कह रहे थे। दादा, मोमिन को जैसे कुछ समझ नहीं आई थी, वो क्या कह रहे थे, किस तरफ इशारा था उनका? अब्दुल अला ने उसका हाथ थाम लिया। उसका हाथ थामे उसे अकबी लॉन से घर के अंदर वाले हिस्से में ले गए थे। अपने कमरे में उसे ले जाकर उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया। अपनी अलमारी खोलकर वो लकड़ी की एक मरसा संदूकची निकाल कर लाए थे और उसे एक मेज पर रखकर उन्होंने मोमिन से कहा, इसे खोलो। मोमिन ने उलझे अंदाज में उनका चेहरा देखा जिस पर अब आंसू बह रहे थे। आगे बढ़कर उसने संदूकची का ढक्कन उठाया। वो खतों से भरी हुई थी और उन लिफाफों पर लिखा नाम देखकर कल्बे मोमिन के दिल की हरकत जैसे एक लम्हे के लिए रुकी थी। वो उसके बाप की लिखाई थी और उसका नाम थी। वो इतने सालों बाद भी पहली नजर में उसे पहचान गया था। वो अब्दुल अला के नाम लिखे हुए ताहा के खत थे। एक लिफाफा उठाकर उसे उलट पलट कर देखता रहा। फिर उसने अब्दुल अला को देखा। फिर खुले हुए उस लिफाफे के अंदर से वो खत निकाला। एक छोटे से कागज पर उसके बाप की लिखाई में एक मुख्तसर सी तहरीर थी, बाबा आज कल्ब मोमिन पैदा हुआ है, आपका पोता, मुझे कल्ब मोमिन के लिए माफ कर दे। ताहा।
इतना बड़ा धोखा किया है फैसल ने हमारे और मेरी बेटी के साथ। अगर शादी नहीं कर सकता था तो ये सब ढोंग करने की भी क्या जरूरत थी?
सुरैया रोई चली जा रही थी, मगर सुल्तान गुमसुम बैठा था। वो दोनों फैसल के घर के दरवाजे से ही लौट आए थे। गम से निढाल और घर में दाखिल होते ही सुरैया वो दुपट्टा पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी थी, जो वो मोमिना के निकाह के लिए खुद काट रही थी सलमा सितारा और गोटा किनारी के साथ।
अभी तो अच्छे दिनों का सोचा ही था और मेरी बेटी तो,
सुल्तान ने मध्यम आवाज में सुरैया की बात काट दी थी। वो जानती है ये सब सुरैया, मेरा दिल कहता है वो जानती है। सुरैया उसके बात पर जैसे रोते रोते चौंक कर उसे देखने लगी थी। ये कैसे मुमकिन है सुल्तान कि वो ये सब जानती हो और हमसे झूठ बोले? उसे यकीन नहीं आया। और हमसे छुपाएगी क्यों? इतना बड़ा गम क्यों झेलेगी अकेले? सुल्तान ने अजीब से अंदाज में उससे कहा, मोमिना है ना, इसलिए। थकन गहरी थी मगर नींद थी कि आने का नाम नहीं ले रही थी, और खामोशी थी कि जाने का नाम नहीं ले रही थी। और इस सब के बीचों बीच रात के इस पहले पहर शूटिंग से वापसी पर मोमिना सुल्तान अपने कमरे के वस्त में कारपेट पर चौकड़ी मारे बैठी थी, और उसके सामने मेकअप के सामान का वो पाउच था जिसमें लिप पेंसिल्स थी। होटल के उस कमरे में पड़े डेस्क पर मौजूद राइटिंग पैड के A4 कागज को कारपेट पर रखे मेकअप की उन पेंसिल्स को बिखराए वो उस कागज पर खत्ताती करते हुए अल्लाह ताला का एक नाम लिख रही थी, और उसमें महफ थी। अमेरिका में काम के दबाव
होम सिकनेस और तन्हाई के इस एहसास को खत्म कर देने के लिए उसके पास ये वाहिद थेरेपी थी जो वो कर रही थी। मेकअप के सामान से खताती और ड्राइंग करना उसके बचपन की आदत में शामिल था और वो आदत अब तक चली आ रही थी। आज तन्हाई कुछ और सिवा थी और दिमाग जिस्म के थककर टूटने के बावजूद सोने पर तैयार नहीं था और ये कैफियत अमेरिका में उसकी रूटीन बन गई थी। और फिर वो इसी तरह रंग अपने गिर्द बिखराए अल्लाह का कोई नाम लिखने लगती। आज उसने अमेरिका में ही बॉलीवुड की एक और फिल्म साइन कर ली थी, एक वर्ल्ड सिनेमा फिल्म। अपने एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था साउथ ईस्ट एशिया में पब्लिक अवेयरनेस की एक कैंपेन के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक ज़ेली तंजीम के साथ मुआहिदा किया था। और यह सब उसकी पहली फिल्म की रिलीज और शूटिंग खत्म होने से पहले हो रहा था। उसका अगला पूरा साल काम के हवाले से टाइम लाइन्स में बटा हुआ था और उसके पास फिलहाल कुछ नया साइन करने को डेट्स देने के लिए वक्त नहीं था। उसके अकाउंट में अब पैसा जतन के बगैर आने लगा था और ठहरने लगा था। और इस सब के बीचों बीच मोमिना सुल्तान खुशी से महरूम थी। उस रात कागज पर एक लिप पेंसिल से अल्लाह का नाम लिखते हुए उसे हुस्ने जहां याद आई थी। वो कई बार उसके पर्स के साथ खेलते हुए उसके मेकअप का सामान भी इसी तरह खोल कर बैठ जाती थी जब सुल्तान उसका मेकअप कर रहा होता। सुल्तान उसे टोकता और हुस्ने जहां सुल्तान को रोक देती। उसे याद आया था पहली बार उसका हाथ पकड़कर अल्लाह के नाम की खताती करवाने वाली हुस्ने जहां ही थी। वो उसी का शौक था जो मोमिना सुल्तान के अंदर पनपने लगा था। और वो उसके मेकअप के सामान के साथ खताती करना शुरू होती और हुस्ने जहां हंसती चली जाती। सुल्तान से कहती, तुम्हारी बेटी किस चीज से क्या लिख रही है, क्या बना रही है? बेवकूफ है, सुल्तान मदाफियाना अंदाज में कहता और उसे डांटता। बेवकूफ नहीं है सुल्तान, अकलमंद है, बस अल्लाह इसे नसीब वाला करे। सुल्तान बेख्तियार आमीन कहता और इसे कभी अदाकारा न बनाए, उसने जहां कहती और सुल्तान उस पर भी आमीन कहता। और वो इस कम उम्री में भी उसने जहां का चेहरा देखती, उसे जांचने की कोशिश करती रहती कि वो उसके बारे में क्या कह रही थी। और अब वो अदाकारा का नसीब लिए बैठी उसने जहां के बारे में सोच रही थी, जिसके हर दूसरे जुमले में उसने जवाल का लफ्ज सुना था। और उसने हमेशा हैरान होकर सोचा था कि वो जवाल क्या चीज थी जिसे उसका बाप डरता था और जो उसने जहां पर आ गया था। और जब वो रूज की पहली सीढ़ी पर कदम रखी रही थी तो बहुत देर उसे पहली बार किसी बाजगश्त की तरह उसने जहां की कही गई बात याद आई थी। झुरिया नहीं जवाल है सुल्तान, चेहरे से पहले लोगों के दिलों और आंखों में आता है। एकदम मोमिना सुल्तान को बाप की याद आई थी। फोन उठाकर उसने सुल्तान को कॉल की थी, इस बात से बेखबर कि अब वो राज जानते थे जो वो छुपाए फिर रही थी। मोमिना कैसी हो बेटा? पहली घंटी के बाद ही सुल्तान ने फोन उठा लिया था और उससे पूछा था। कुछ देर दोनों घर सुरैया और काम के हवाले से बात करते रहे। सुल्तान चाहने के बावजूद उससे फैसल की बात नहीं कर सका, मगर उसके लहजे में उसने फैसल के हवाले से कुछ खोजने की कोशिश जरूर की थी। वहां कुछ नहीं था। अब्बा, आपने मुझे कभी हुस्ने जहां के बारे में नहीं बताया। चंद लम्हों की गुफ्तगू के बाद सुल्तान उससे फैसल के बारे में पूछने की हिम्मत पैदा कर रहा था। उसने खिलाफ तवक्को हुस्ने जहां का जिक्र छेड़ दिया था। वो हैरान हुआ था। क्या नहीं बताया मोमिना? सब कुछ तो बताया है, सिर्फ उसके उरूज का बताया है, जवाल का तो नहीं बताया। कैसे आया था जवाल उस पर, क्यों आया था? वो कुरेद रही थी। प्यार मार गया था उसे, वरना हुस्ने जहां के सामने ठहरने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। सुल्तान ने गहरा सांस लिया। बेवफाई की होगी जिससे उसने प्यार किया, मोमिना ने अजीब से लहजे में कहा। बेवफाई करता तो सहजाती हुस्ने जहां। उसकी वफा नहीं सह सकी, बस गलती कर बैठी एक। उसने आह भरकर कहा था,
क्या गलती अब्बा? मोमिना ने पूछा था।